प्यारे श्रोताओं, थारी बाता रेडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुनीता मेहरा और मेरे साथ हैं पूर्वी अग्रवाल। पिछले कार्यक्रमों में हमने श्यामला संसाधनों की स्थिति, उपयोगिता और जमीनी प्रयासों के बारे में अपनी समझ बढ़ाई।
थार के रेगिस्तान में श्यामला संसाधनों पर बातचीत को आगे बढ़ाते हुए आज हम FES संस्था के रीजनल टीम लीडर श्री VK शर्मा, औरन हमारा जीवन किताब के लेखक भुवनेश जी जैन और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान मतलब आफ्री जोधपुर में वन परिस्थिति विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर जी सिंह से बातचीत करेंगे।
शर्मा जी, श्यामला संसाधनों का क्षेत्र कितना है?
श्यामला संसाधनों का जो क्षेत्र, विशेष रूप से जमीन की मैं बात करूं तो पूरे देश में 5 से 8 करोड़ हेक्टेयर एरिया है जो श्यामला भूमि के अंदर जिसको देखा जा सकता है। 5-5 साल के अंदर देखते हैं तो लगभग 2% का कटाव हुआ है, 1.8 से 2% से थोड़ा कम कटाव हुआ है। देश के स्तर पर देखें तो लगभग 84 करोड़ लोग ऐसे हैं जो श्यामला संसाधनों पर निर्भर है। राजस्थान में जो श्यामला भूमि है लगभग 108 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है। ये आंकड़े हैं आपके 1984-85 के, ये सरकार के ही आंकड़े हैं जिसको हमने देखा है। लेकिन 2006-07 में जब इन्हीं आंकड़ों को हमने वापस से विश्लेषण किया तो पाया कि ये 108 लाख हेक्टेयर से घटके 87 लाख हेक्टेयर ही रह गया है।
इतना बड़ा क्षेत्र है तो इन श्यामला का कौन कहाँ तक उपयोग कर सकते हैं और इसकी देखरेख किसको करनी चाहिए? भुवनेश जी, आपका इस बारे में क्या कहना है?
के जड़े खेत में पार नहीं पड़े, गोचर में पार नहीं पड़े, दूसरे नगू पार नहीं पड़े तो पचे ओरन में घुसता बिलो। उन्हें पहले तो ओरन ने वे छेड़ता ही को नहीं, वे राहुल सिंह थोड़ा आज जमान रही हो समझो आप, वो रिजर्व फॉरेस्ट तो वो, उन्हें बाद में उनमें घुसता। तो दूसरे के 15-20 गांव 25 गांव और जब एक मुन जो है ओरन या गोचर या ओरन गोचर दोनों बातें निर्भरता थी तो कोई आज जमाने री पंचायत जी को बोल रही है उन्हें केवल उन्होंने हक नहीं होने चीजें। जिको 15-20 गांव वाली जिको मवेशी है लोग उन बातें निर्भर है तो वाणी एक पंचायत बननी चाहिए और वाणे हाथ में ने जिको है वो ओरन गोचर ओरन रोए या गोचर हो या ओरन गोचर दोनों रोए उन्हें समन्वय उन्हें विकास की जिम्मेदारी देनी चाहिए।
सिंह साहब से जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन और श्यामला संसाधनों का आपस में क्या जुड़ाव है?
कि अभी जैसा प्रेडिक्शन है कि पश्चिमी राजस्थान में बरसात की मात्रा थोड़ी बढ़ेगी, अब बढ़ने से उत्पादकता बढ़ सकती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी वातावरण में बढ़ रही है, तो उसके चलते हम कहते हैं इसको कि उसका फैसिलिटेटिव माने सकारात्मक प्रभाव होगा कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को फोटोसिंथेसिस में चाहिए तो इससे उत्पादकता में बढ़ने की संभावना है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के साथ साथ अगर टेम्परेचर तापक्रम भी अगर वातावरण में बढ़ रहा है तो उसके चलते जो वाटर की कमी होगी और नुकसानदायक होगी, और वो जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो सकारात्मक प्रभाव हमें पौधों पर देखने को मिलेगा उसकी अपेक्षा इसका नेगेटिव प्रभाव ज्यादा होगा। साथ ही बरसात ज्यादा होगी तो कम ही समय में ज्यादा पानी आएगा तो पानी जो है बह के चला जाएगा, तो बह के चला जाएगा तो वो पानी हमारे उपयोग में नहीं आया, जो जलवायु परिवर्तन है उसका प्रभाव है।
आपकी राय में श्यामला पर क्या सरकार को भी कोई कदम उठाने चाहिए?
अब आप देखिए कि वो जैसलमेर बाड़मेर और जोधपुर में लोग तो साथ जो बड़ी ओढ़ना है वो पता की होगी इटारी नागणी चिया है रामदेव बाबा रामदेव है फतेहगढ़ रे जो सावतारी देख रहे ओरण है शिव छतरी झणकली है मुंगेरियारी नागणची है ढोगरी विराता जो हेंगू मोटी ओरण है 17,947 हेक्टेयर वाली जो है जमीन है ओरण और ये ओसियारमी ने जाखड़ गांव वाली ओरण है तो हेंगू मोटी ओरण है। तो मैं लोग सरकार ने भी कहो है कि इन्हें हेरिटेज साइट रूप में घोषित करे।
इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, उसके पीछे यदि कारण देखेंगे तो जब इस तरह के क्षेत्रों को हेरिटेज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि फिर वो इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ बात करते हैं कि कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग अट्रैक्ट होंगे, कुछ सेक्शन उससे फायदा लेगा, कुछ उससे उस क्षेत्र में इनकम बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा। कहीं यदि ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि उस क्षेत्र पर जो लोग चराई के लिए निर्भर हैं, जो लोग जलाऊ लकड़ी के लिए निर्भर हैं, उनका क्या होगा? तो हम ये मानते हैं कि यदि ऐसा करना है तो लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए करें।
शर्मा जी, श्यामला संसाधनों को लेकर अभी कोई सरकारी नीति भी बनी है क्या?
राजस्थान सरकार ने जो श्यामला नीति बनाई है आ सकते हैं तो मोटे रूप में हम पॉलिसी को देखते हैं तो एक तरह से लोगों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए विकेंद्रीकृत प्रबंध व्यवस्था बनाए रखने के लिए
हम पंचायत और ग्राम सभा को सर्वोच्चता देने के लिए एक डेटाबेस खड़ा करने के लिए बात की गई, और इसमें जो एक नई चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है, अहम है, वो किया गया है कि हर एक ग्राम पंचायत में एक सामलात रजिस्टर रहेगा। उस रजिस्टर के अंदर जितनी भी इस तरह की सामलात जमीनें हैं और उनका जो वर्तमान में उपयोग है उसको उसके अंदर दर्शाया जाएगा, और ये माना गया है कि यदि उसमें ये चीज एक बार लिख दी जाती है तो उन सामलात जमीनों को उनके उपयोग को बदलना इतना आसान नहीं होगा।
इस नीति के अलावा कुछ आदेश भी जारी हुए हैं क्या?
इसी तरह राजस्थान सरकार ने बहुत सारे ऐसे आदेश जो उन्होंने पिछले दो सालों में पारित किए हैं, अतिक्रमण को हटाने के लिए हो, चरागाह जमीनों को नरेगा योजना के तहत विकसित करने के लिए हो। अभी राजस्थान सरकार ने एक आदेश दिया था कि हर एक ग्राम पंचायत को कम से कम 50 हेक्टेयर जमीन पंचायत के क्षेत्र में विकसित करना है। फिर उन्होंने बोला कि जो सरकारी तंत्र से जुड़ा हुआ है, यदि उनको चरागा विकास कैसे होता है, सामना जमीन विकास कैसे होता है, यदि इसको जानना है तो वो FES का जो क्षेत्र है जहाँ काम कर रही है वहां पर जाके देख सकते। दूसरा है कि हमारे जो सेक्रेटरी से जो आदेश जारी हुआ सचिवालय से सेक्रेटरी साहब का, उसमें डाला गया है कि कोई भी चरागा जमीनों पर अतिक्रमण आगे नहीं हो, उसको कैसे बचाया जाए और जो अतिक्रमण है उसको किस तरह से छुड़वाया जाए, उसमें क्या योगदान हो सकता है, उसके लिए बात की है। तीसरा, पिछले साल 2 अक्टूबर को राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि सारी ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं में ये बात पर चर्चा हो कि उनकी सामलात नीति का वर्तमान में स्थिति क्या है, यदि और उन्होंने कहा था कि यदि उनके यहाँ चरागाह जमीनें कम पड़ती हैं जानवरों की संख्या के आधार पर तो वो बिलानाम जमीन को चरागाह में परिवर्तित कराने का निर्णय ले सकते हैं। हर एक गांव के स्तर पर एक संगठन समिति बने जो पंचायत के अधीन काम करेगी, जो उस गांव में आने वाली सामलात जमीनों के देखरेख विकास करने के लिए होगा। तो इस तरह के बहुत सारे राजस्थान सरकार के द्वारा इस तरह के आदेश पारित किए हैं।
कुल मिलाकर अब हमें करना क्या है ये भी जान लेते हैं।
अरे बहन, ये तो जान ही लेंगे, पर मैं तो बोर हो गई, थोड़ा गीत संगीत तो सुनाओ।
अरे हाँ, मैं तो केवल बात करने में ही मशगूल हो गई, चलो सुनते हैं।
पुरानी चीजों को, जैसे लोगों को आज भी जिंदगी मिलती है, आज भी प्राण मिलता है, उसको भूले नहीं। उन्हें भूल गया तो मतलब अपा लोग जिको है न तो बुजुर्ग हमारी जिको है उन्हें सम्मान कर पा रही, न आपकी जिंदगी री बेहतरी वास्ते सोच पा रही, न आने वाली पीढ़ी के वास्ते बेहतरी वास्ते सोच पा रही। तो सामलात जमीन में जिको आगोर है वो ठीक करे, ठीक करावे, लोगों ने अतिक्रमण होने नहीं देना चीजें, और गाँव री जिको वनस्पति है उनमें किन प्रकारों को बदलाव आएगी है, किन प्रकार की चीज विलुप्त हो गई है, उन्हें बारे में जो है वो जानकारी लेवे और कुछ पूर्व प्लान बनावे, सरकार माते भी दबाव डाले, पंचायत माते दबाव डाले कि उन जो है सारी वनस्पति ने पाछो वो जो औरण गोचर में की कर खड़ो करे।
भाई, आप लोगों ने बहुत कुछ हमें बता दिया, काफी कुछ हम लोग भी कर लेते हैं, पर तकनीकी सहयोग हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है?
जब हम तकनीकी सहयोग की बात कर रहे हैं वो दो प्रकार से हो सकता है। एक है कि इस तरह की संस्थाएं, विभाग, कॉलेज अपनी सेवाएं गांव को, पंचायत को कैसे दें, तो उनके अपने प्रोग्राम हैं जिसके माध्यम से वो बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, बहुत सारी चीजें चलाते हैं, कृषि विकास के लिए चलाते हैं, सामलातों के लिए चलाते हैं, वो एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि गांव के लोग यदि सोचते हैं, पंचायत सोचती है, तो अपने यहाँ पे ही इस तरह का योजना बना के उनको किस किस मुद्दे पर सहयोग चाहिए, किस तरह का सहयोग चाहिए, वो लोग अपने इस सहयोग के लिए जो जो नजदीकी संस्थाएं हैं, जो विभाग हैं, उनको पत्र लिख सकते हैं, और वो जब पत्र वहाँ पहुँचता है तो निश्चित कोई ना कोई जरूर उनको उस तरह का सहयोग करता है। यदि मैं FES की बात करूँ तो हमारा जो क्षेत्रीय कार्यालय है इसको इस क्षेत्र में यदि इस तरह का कोई भी सहयोग की आवश्यकता है वो यहाँ हमें पत्राचार लिखते हैं, या हम ऐसी संस्थाओं को भी चिन्हित कर रहे हैं जो ऐसा ही काम कर रही हैं तो उनके साथ भी उन लोगों को जोड़ रहे हैं, तो उनके लिए यदि पत्र लिखते हैं तो वो निश्चित है कि वो संस्थाएं उनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में किसी न किसी तरीके से सहयोग जरूर प्रदान करेंगे।
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे श्रोताओं को अच्छी जानकारी दी। जोधपुर जिले जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री चूनाराम जी बिश्नोई से बात करते हैं।
सर बताइए, श्यामलात पर सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है?
ओरण और गोचर में हमारे नरेगा के अंदर सिल्वी पास्चर स्कीम है, एक है जिसके अंदर चारागाह तो है वो डेवलप किया जाए, विभिन्न प्रकार की जो यहाँ की जलवायु को अनुकूल है वो घास भी लगाई जाए तो उसके अंदर, और साथ साथ में उसकी फेंसिंग करके ताकि उसको अनियोजित तरीके से बर्बाद नहीं किया जाए। तो और दूसरा है जो मरु विकास के अंतर्गत है, वो जो किसी एक ग्राम पंचायत का करीब, हाँ करीब 5,000 हेक्टर जमीन है वो लेकर के उसको है जो विकास उसका विकास का है पूरा, एक पूरा यूँ सुनियोजित है जो स्कीम बनाई जाती है उसके अंदर पानी के लिए, पर्यावरण के लिए किस तरह से पौधे वगैरह जो ज़्यादा है जो रोपे जा सके, और भूमि की उर्वरा शक्ति है उसमें ताकि ज़्यादा घास उग सके, तो उस तरह से 10 करोड़ से 15 करोड़ तक की ये जो है इसकी सीमा बढ़ गई।
धन्यवाद चूनाराम जी, आपने श्यामलात पर सरकार के कार्यक्रमों के बारे में बताया।
श्यामलात पर जमीनी प्रयासों, सरकारी गैर सरकारी प्रयासों और अनुभवों को समझने के बाद हमारे गांव में श्यामलात पर तुरंत प्रयास शुरू करना ही उपयोगी है।
आपके गांव के जो भाई बहन आज यह कार्यक्रम नहीं सुन पाए हैं उन्हें बताना कि हर एक कार्यक्रम लगातार 2 बार प्रसारित होगा, मतलब एक बार में छूट भी जाए तो दूसरी बार को इसी टाइम पर जरूर।
तो साथियों, अगला कार्यक्रम सुनना और इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार भेजना मत भूलना। आप अपने सुझाव हमें इस पते पर भेज सकते हैं, उन्नति विकास शिक्षण संगठन लहरे रिसोर्ट के पास
चौपासनी जोधपुर,
फोन नंबर 02931204618।
जाते जाते एक बात और बताएं कि यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, कौन सी बातें ज्यादा अच्छी लगी, इसमें आप कुछ बदलाव चाहते हैं, इसमें जिस मुद्दे पर बात हुई है उससे जुड़ी आपकी या आपके गांव की कोई समस्या है तो अभी आप 1 घंटे तक हमसे बात कर सकते हैं। आपके यहाँ हुए ऐसे किस्से भी आप हमें बता सकते हैं। और हाँ, रोजाना सवेरे 10 से शाम 5 बजे तक टेलीफोन पर इस कार्यक्रम के बारे में आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं और सवाल भी पूछ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर याद रखें 02-91-32-046-18। अच्छी बात है कि हर एक एपिसोड खत्म होते ही आपके सुझाव और विचार हमें मिलने लगते हैं। बाड़मेर जिले से कांता रामा राम, मोहम्मद रफीक, बबूता राम जाखड़, भीमा राम, चैना राम फडोदा, मोहम्मद पठान, फरसा राम खत्री, खैराज मलहुडा, बिंजा राम पवार, जोधपुर जिले से वारपंच बालचंद, चौधरी किसाना राम, भोमा राम चौधरी, झूमर राम, अर्जुन बेनीवाल, गंगा राम, मनोहर तिजारा, रणवीर सिंह, देवा राम, जगदीश जाखड़, महिपाल, जालोर जिले से दोला राम दिवासी, चुरू जिले से नैना राम नायक, अजमेर जिले से सुनील कुमार ने फोन करके बताया कि कार्यक्रम में बोलने का अंदाज बढ़िया है, ग्रामीण औरतों के गीत अच्छे हैं, पूरे सुनने की इच्छा भी जताई है। चिपको आंदोलन जैसे किस्सों से जमीनी प्रयासों की प्रेरणा मिली है। इन्होंने कहा कि उनके गांव में भी ओरण गोचर में अतिक्रमण की स्थितियां बनी हुई है। सभी जगह अतिक्रमण करने वालों में गाँव के ही दबंग व्यक्ति है जिनके सामने कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते। इन स्थितियों में श्रोताओं को सुनवाई का अधिकार कानून के तहत गांव पंचायत में अर्जी लगाने के सुझाव दिए हैं। फोन करने वाले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सुझाव और विचार जानने के लिए हम तैयार हैं। मतलब आप फोन करते रहिए और इस कार्यक्रम को अच्छे से अच्छा बनाने में पूरा सहयोग भी करिए।
तो सोच क्या रहे, उठाइए फोन और 02913204618 पर तुरंत कीजिए हमसे बात।